सोच विचार के साथ मेरा नाम नदीम उल हक है
और मेरा नाम अंजुम अल्ताफ है।
अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सोच विचार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जिसके अंदर मेरा तो बहुत इंटरेस्ट है और बड़ा मुझे शौक है इस टॉपिक का, और आज मुझे एक साहब मिल गए हैं जो इस टॉपिक में माहिर हैं, वो है अर्बन ट्रांसपोर्ट। आजकल ये जो मेट्रोज बन रहे हैं उसकी वजह से हम बहुत बात करते हैं, बड़े खुश होते हैं कि हमारे माशाल्लाह इतने अच्छे मेट्रो बन गए हैं, हमारा मतलब हम तो दुबई बन गए अब। तो आज हम आपके लिए एक दुबई के ट्रांसपोर्ट इंजीनियर को ले आए हैं, अब उनकी बात सुनिए। इनका नाम है मोहम्मद रिजवान। रिजवान साहब, ज़रा थोड़ा अपने बारे में बताएं ताकि लोग समझ जाएं कि आप क्या हैं।
शुक्रिया नदीम साहब। मेरा नाम रिजवान है, मैं दुबई में कंपनी पार्सन, वहाँ ट्रांसपोर्ट डिजाइन इंजीनियर हूँ बेसिकली।
अच्छा, माशाल्लाह, ट्रांसपोर्ट डिजाइन इंजीनियर, ठीक
जी। तो जो बात करने का मकसद है वो लोगों को फर्क समझाना है कि जो पाकिस्तान में जिस तरह से ट्रांसपोर्ट डिजाइन का काम हो रहा है या बेसिकली रोड डिजाइन का काम हो रहा है, उसमें क्या क्या चीजें हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि चीजें इंप्रूव हुआ। तो मेरा जो मेन आज का जो टॉपिक है वो ट्रांसपोर्ट तो बहुत ब्रॉड टर्म है, हम अर्बन स्ट्रीट की बात कर लेते हैं। लेट्स से
अर्बन स्ट्रीट, ये तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, माशाल्लाह, चलिए बताइए।
जी बिल्कुल, हाँ। जी बिल्कुल, ठीक है।
मतलब जैसे कि लाहौर की सड़कें हैं, आप उनके बारे में बात करना चाह रहे हैं, अर्बन स्ट्रीट है। अच्छा,
पाकिस्तान की, जैसे मैं कराची में रहता हूँ, तो कराची लाहौर सिमिलर है सिनेरियो ऑलमोस्ट।
बिल्कुल बिल्कुल,
डिफरेंस क्या है? अच्छा, कराची में आज से 10 साल पहले ऐसे हुआ, 4 या 5 कॉरिडोर डिक्लेयर हो गए, ये जी सिग्नल फ्री कॉरिडोर है, ठीक है। तो हमने उन्हें अपग्रेड किया एज अ रोड। अच्छा, रोड में और स्ट्रीट में फर्क ये है कि रोड इज सपोज टू बी ओनली फॉर कार, आप सिर्फ कार को प्लान करते हैं, कार को फोकस करते हैं, उसी पे डिजाइन करते हैं, वही कंस्ट्रक्शन होती है। जब आप स्ट्रीट की बात करते हैं तो आपको चारों चीजें कवर करनी है, आपने कार भी कवर करनी है, उसमें पेडेस्ट्रियन लोग कैसे चलेंगे ये भी कवर करना है, और फिर जो है इसके बाद आगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसे चलेगी, क्योंकि हम फ्लाईओवर बनाते हैं अक्सर उसके एक्सेस बंद हो जाते हैं, बहुत प्रॉब्लम होती है, डिस्करेज करते हैं लोगों को, और साइक्लिस्ट, ये चौथा मोड जो है ये अब बहुत पॉपुलर हो रहा है, दोबारा इवॉल्व हो रहा है, इन फ्यूचर ये बहुत की मोड होगा। तो ये चार चीजें हम कवर करते हैं।
तो चार हो गई, एक तो हो गई गाड़ी, हो गई एक, हो गया पैदल चलना, ठीक है, एक हो गया साइकिल पे चलना, तीसरा हो गया बस या पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे, चौथा हो गया पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ठीक है जी। तो चार तरीके हैं इंसान के चलने के, जो हम पाकिस्तान में सोचते हैं सिर्फ एक ही है, गाड़ी, उसके अलावा कुछ नहीं। और उसके अलावा जो हमने नई चीज अब लगाई है वो अब मेट्रो लगाई है, वो चले उस पर बाद में बात करेंगे, अभी ये बताइए, आगे बताइए।
अच्छा, एक चीज ये है कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है स्ट्रीट की या रोड्स की। शहर जो है उसके अंदर जगह लिमिटेड होती है, पब्लिक स्पेस को होती ही कम है, तो पार्क्स लिमिटेड होते हैं या और कोई लाइब्रेरी वगैरह। तो जो रोड्स या स्ट्रीट्स होती हैं वो शहर का ऑलमोस्ट, अलग अलग शहर के फिगर्स अलग अलग हैं, अराउंड 60-80% पब्लिक स्पेस रोड पे जो है ना बेस कर रही होती है। तो ये इतनी क्रिटिकल चीज है, तो उतना ही सीरियस उसको लेना चाहिए।
आप कह रहे हैं कि शहर में तकरीबन 50-80% तक पब्लिक स्पेस, जो यानी कि आप आम आदमी के इस्तेमाल की स्पेस है, वो सड़क है, ठीक है, ये कह रहे हैं ना आप, ठीक है ना, चलिए। और वो सड़क हमने गाड़ी के लिए बना दी,
बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, वो इकोनॉमिस्ट मैंने एक दो लोगों से सुना, वो ये कहते हैं कि जो ग्रेट स्ट्रीट है, जो अच्छी सड़क जो चारों जो को सर्व करेगी, वो कमर्शियल के लिए भी ज्यादा बिजनेस जनरेट करेगी, और अगर किसी का घर उस सड़क के अलोंग है या उसी कम्युनिटी में जो सड़क के पास है, उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी। तो अगर आप सड़क अच्छी डिजाइन करते हैं, सबके लिए एक्सेसिबल है, तो वो बिजनेस को भी प्रमोट करेगा, और जो लोग जिनके घर है उनकी वैल्यू भी जो है हाई होगी,
यानी कि विन विन सिचुएशन होगी, सबका फायदा हो गया।
बिल्कुल, एज इकोनॉमिस्ट आप बेहतर समझा सकते हैं इस चीज को, ये क्या है। तो ये तो एक की पॉइंट हो गया इसमें। अच्छा, जो हमने बात की कि ये चार चीजें होती हैं इसमें कि जो हम, अच्छा, हमारे यहाँ एक हम लोग जो मिस्टेक कर गए हैं, जो हमने BRT स्टार्ट की, लाहौर में बनाई, पिंडी में बनाई, अब मुल्तान में स्टार्ट हो गई, कराची में
आ रही है,
नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल, अच्छा, इसको मैं कहता हूँ कि ये ट्रांसपोर्ट की टर्म है ऑलमोस्ट है मास्टर्स लेवल की थी, जैसे लोग मास्टर्स करें ना, लेकिन प्रॉब्लम हमारे यहाँ ये कि हमने मैट्रिक नहीं किया हुआ, जो हमारा ट्रांसपोर्ट उसका जो लेवल है वो अभी स्कूल का बच्चा भी नहीं है।
अच्छा, अभी तो बच्चा, ठीक,
बिल्कुल, जिसने स्कूल नहीं देखा हुआ आपने उसको मास्टर्स में डाल दिया या मास्टर्स करा दिया उसको,
ठीक,
तो अब वो क्या मास्टर्स करेगा। तो हमारी पब्लिक यूज टू है नहीं बिल्कुल बसेस की। देखिए, बेसिक ये जो चार चीज है ना, जब आप कोई भी सड़क बनाने जाते हैं, तो पाकिस्तान में जब सड़क बनती है तो एसफॉल्ट एज जो है ना, वो डिजाइन जो करने वाला है वो भी, उसकी थिंकिंग ये है कि बस ये जो है ना मेरा काम यहाँ खत्म हो गया। अब जहाँ सड़क चल रही है इसके बाद घर की दीवार तक बीच में क्या चीज होगा, उसमें साइड वॉक आना है, लैंडस्केप आना है, यूटिलिटीज आनी,
यानी कि बस सड़क बना दी, सड़क का जो किनारा है वहाँ आप भूल गए, कुछ भी नहीं, वहाँ कुछ भी नहीं, अक्सर घास होता है या गंद होता है या कूड़ा होता है वगैरह, है ना?
बिल्कुल ऐसे ही। तो वो पार्किंग किस तरह आनी है, कहाँ आनी है, तो ये चीजें अगर हम इसको जरा देखना शुरू कर दें, क्योंकि इतनी क्रिटिकल चीजें 70-80% अगर शहर का या पब्लिक स्पेस का एरिया है, तो इसको अगर हम देखना शुरू कर दें तो ये अच्छा है। अच्छा, दूसरी चीज ये कि एनवायरमेंट का एक बड़ा प्रॉब्लम है। अगर आप किसी साफ जगह से पाकिस्तान आए, स्पेशली कराची है, तो पार्टिकुलेट मैटर या एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा होगी। तो अब ट्रीज आप कहाँ लगाएंगे, या तो पार्क है या सड़क है। तो ये चीज भी अगर आप प्रॉपर डिजाइन कर लें, उसका पार्ट बना लें उसमें, तो आपके पास अच्छी खासी मीडियंस में या सेपरेटर्स जो होते हैं मेन रोड और सर्विस रोड के बीच में, जगह निकल आती है कि आप ट्रीज लगा सकें। उससे आपको शेड भी मिल जाता है पैदल चलने के लिए, पार्किंग के लिए भी, और फिर आपका जो एनवायरनमेंट भी बेहतर हो सकता है इस चीज से, एक ये उसमें एडवांटेज है आपको। अच्छा, अब आ जाए फर्दर उसमें जो है स्ट्रीट में, हमारे यहाँ जो रोड डिजाइन करते हैं उसमें हम एक चीज और करते हैं, जहां हमें कंजेशन नजर आती है हम फौरन फ्लाईओवर पे चले जाते हैं, अंडरपास पे चले जाते हैं।
बिल्कुल
लास्ट स्टेप होता है। अच्छा, स्ट्रीट में ये है कि जो हमने यूएई में काम किया, स्पेशली अबू धाबी वगैरह में, जंक्शन की इम्प्रूवमेंट के बहुत सारे तरीके होते हैं, तो वो फ्लाईओवर या अंडरपास बिल्कुल लास्ट स्टेज है। हम
यानी कि जो चौराहा है जहाँ की सड़कें मिलती हैं और जहाँ कंजेशन होती है, उसमें आप दुबई में एकदम फ्लाईओवर नहीं बनाते।
बिल्कुल
बिल्कुल बिल्कुल अंडरपास नहीं एकदम बनाते। कमाल की बात, हम तो सोचते हैं दुबई में फ्लाईओवर बनते हैं।
नहीं, दुबई एक अलग चीज है। अच्छा, स्ट्रीट और रोड का फर्क समझने की चीज है, ये फ्लाईओवर अंडरपास दुबई में अगर आप देखें ना, शेख जैद रोड इज अ रोड, उसकी पोस्टेड स्पीड शहर के अंदर भी 100 है। इसी तरह सिमिलर 3 या 4 रोड्स और हैं जिन पे पोस्टेड स्पीड अराउंड 100 है, लेकिन जो हमारी बुलेवर्ड्स होती है ना, जो 60 पोस्टेड होती है, जिसपे हर 800 मीटर बाद एक सिग्नल आ जाता है दूसरी तरफ से रोड क्रॉस कर रही होती है, वो दे आर ऑल स्ट्रीट। यहाँ पे आप फ्लाईओवर अंडरपास बिल्कुल नहीं बनाते।
अच्छा, ठीक ओके,
ये है समझने की चीज। अब आप आ जाए इसमें, आप आगे जरा, कि एक नया कॉन्सेप्ट जो हम आजकल यूएई में यूज कर रहे हैं कि हम लेन विड्थ को कर रहे हैं इसमें नैरो। हमारी पुरानी रोड्स बनी है सारी 12 फीट के हिसाब से बनी हुई है, जो कि हाईवे की लेन विड्थ है, जहाँ 120 पे गाड़ी चलनी है। शहर में गाड़ी चलनी है 40 पे, हार्डली 60 पे, ये मैक्सिमम है। तो उसके लिए आपको 12 फीट नहीं चाहिए, वो 10 फीट चाहिए। अब अगर 3 लेन का कैरिज वे है, तो अगर आप उसको 12 से 10 पे ले आए, तो 6 फीट आपके पास एक्स्ट्रा जगह आ जाती है, उसको आप साइड वॉक में ऐड कर सकते हैं।
ठीक,
तो आपके पैदल चलने की जो जगह बिल्कुल नहीं है लोगों के लिए, वो आप उसको प्रॉपर जगह बना सकते हैं लोगों के पैदल चलने के लिए, क्योंकि हमारे पास नहीं जगह बिल्कुल।
पर हम तो इतना अमीर मुल्क है, हम पैदल चलना ही नहीं चाहते।
ये एक सवाल है कि क्यों साइकिल इतना इंटरेस्टिंग मोड है। मैंने ऑलमोस्ट अभी
साइकिल मुझे लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ नहीं चला सकते, क्योंकि हमारे यहाँ गर्मी बहुत होती है।
सर मेरी बात सुन ले, पिछले 6 महीने में दुबई में मैंने 100 किलोमीटर साइकिल ट्रैक डिजाइन किया है, सिर्फ पिछले 6 महीने।
अच्छा, माशाल्लाह।
उससे पहले कितने हुए ये मुझे नहीं पता।
अच्छा, आप कह रहे हैं कि दुबई में साइकिल चलती है, वहाँ हालांकि हमसे ज्यादा गर्मी होती है और ज्यादा देर गर्मी होती है, दुबई का रूलर और हम नहीं साइकिल चला सकते।
जो चाहे बना सकता है, उसकी मैंने खुद पर्सनल ट्वीट देखी है कि मैं दुबई में जुमेरा के एरिया में साइकिल ट्रैक ला रहा हूँ, तो ये उसका विजन है। अब आप देख लो,
बहुत
वो हर चीज दे रहे हैं, फैसिलिटी वाइज हर चीज दे रहे हैं, कि यानी फोर्स नहीं कर रहे आपको कि आप गाड़ी पे ही रहे, बस भी दी हुई है। अब मैं जैसे दुबई में रहता हूँ, मेरे पास गाड़ी है, मैं गाड़ी घर पे रख के मेरे घर के नीचे से मुझे बस मिल जाती है, एयर कंडीशन बस, आराम से बैठ के मुझे पार्किंग की कोई हेडेक नहीं, ऑफिस के पास उतारती है, 2-3 मिनट की वॉक 50 डिग्री में भी हम हंसते खेलते वाइड साइड वॉक होते हैं 5-6 मीटर। अच्छा, हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि जब ये प्लानिंग करते हैं ना रोड की, तो वो एक कॉन्सेप्ट है हमारे जी 20 फिट की गली, 30 फिट की गली, तो 20-30 या 40 फिट की गली है, इसमें ये रोड बनाते हैं, फिर साथ में थोड़ी जगह छोड़ देते हैं, घर वाले अपने कोई दरख्त वरख घास लगा दी, पैदल चलने की जगह नहीं होती,
खत्म,
तो वो शेयर्ड ट्रैक बन जाता है एक तरह से।
ठीक, वो फिर गाड़ी के लिए रह जाता है, बिल्कुल
ठीक। अच्छा, 2-3 इसमें चीजें मैं चाह रहा हूँ और ऐड कर दूं, तो हम लोग मिस कर जाते हैं यहाँ पे। एक जैसे रोड पे बस स्टॉप होता है, अच्छा बस स्टॉप ऑन लेन भी हो सकता है, ऑफ लेन भी हो सकता है, यानी आपका राइट ऑफ वे अच्छा है आपके पास, साइड वॉक के अंदर आप जगह निकालते हैं, उसमें ऑफसेट करते हैं उसको, और बस जो है लेन पे नहीं रुकती, बस स्टॉप अलग से बना होता है, उसमें कलर भी चेंज कर देते हैं अक्सर, वहां वो अंदर जाती है तो पीछे से कैपेसिटी इस तरह बढ़ जाती है आपकी, लेन आपकी चल रही है, बस जो है साइड पे जाके रुकी, लोग बोर्डिंग अलाइटिंग हो जाती है, फिर वापस लेन पे आ जाती है वो बस। और सेम चीज जो है वो टैक्सी के लिए भी है और रिक्शा के लिए भी, ठीक है जी। हमारे यहाँ वो लेन के ऊपर ही बस रुकती है, इनफैक्ट कराची में तो अगर 3 लेन का रोड है, मैंने 2nd लेन पे भी रुकती हुई देखी है, तो सिर्फ 1 लेन प्रैक्टिकली चल रही है। अब हम रोते हैं हमारे रोड चौड़े नहीं है, वो इशू इंफ्रास्ट्रक्चर की फिजिकल वो नहीं है, ऑपरेशनल इशू ज्यादा है इनके, वो फिक्स करना एक अलग चीज है। अभी तक वो कोई मैंने ऐसी एनालिसिस या लोगों को गौर करते हुए नहीं देखा कि अगर हम ट्रैफिक पुलिस का निजाम इंप्रूव कर दें और इसी तरह फ्रीट व्हीकल्स जो हैं, जो जो चीजें हमारी कैपेसिटी किल करती हैं। अच्छा, मैंने अक्सर देखा है जो हाई यानी हैवी व्हीकल्स होती हैं, यानी ट्रेलर हो गए या बसेस हो गई, वो बीच के लेन में या फास्ट लेन में भी जा रही है इनफैक्ट। तो ये अगर स्लो लेन में हो जाए तो गाड़ियां जो है हमारी अच्छी मतलब स्पीड से जा सकती हैं, ये चीज कैपेसिटी को सपोर्ट करती है। अच्छा, इसके अलावा भी हमारे एक जहन में है कि हमने जो भी सड़क बनानी है वो 15 मिनट का जो पूरे दिन का मैक्सिमम वॉल्यूम है उस पर सड़क बनानी है। अब उसके हिसाब से अब अगर हम लेन्स बढ़ाते जा रहे हैं तो हम पेडेस्ट्रियन को किल कर रहे हैं, साइकिल कोई है नहीं हमारे पास, फिर स्पीड हम बढ़ा रहे हैं तो क्रॉसिंग कोई नहीं है रोड की, क्रॉसिंग कोई नहीं है तो हम बिजनेस किल कर रहे हैं लोगों का। तो ये सारी चीजें हैं जो बगैर इस चीज को कंसिडर किए हम अगर यूएई में जो काम करते हैं हम आगे बढ़ नहीं सकते कि नहीं जी इसको बंद कर दिया इसको बंद कर दिया। एटलीस्ट आपने कनेक्शन देना है, पेडेस्ट्रियन को आप ब्लॉक नहीं कर सकते। तो बस के लिए आपने ड्रॉप ऑफ देना है, टैक्सी के लिए भी आपने ड्रॉप ऑफ देना है, लेन के ऊपर आप उसको रोक नहीं सकते। ये सारी चीजें होती हैं तो बगैर फ्लाईओवर या अंडरपास बनाए आप सिग्नलाइज जंक्शन से ये चीज कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, अब एक अगर सीक्वेंस के अंदर 5 या 6 सिग्नल आ रहे हैं, एक कॉरिडोर है, अब लाहौर में भी सिग्नल फ्री कॉरिडोर के कॉन्सेप्ट आ गए, यही अब आपके पास ट्रेवल पैटर्न डिफाइन है। मॉर्निंग में रेजिडेंशियल एरिया से कमर्शियल एरिया की तरफ लोग जा रहे होते हैं, इवनिंग में वाइस वर्सा है। तो एक हम दुबई में भी जुमैरा रोड पे हमने ग्रीन वेव का कॉन्सेप्ट ये यूज करते हैं और ये आई थिंक पाकिस्तान में भी होता रहा पहले कि एक सिग्नल से जो लोग निकल रहे हैं उनका सिग्नल का टाइम इस तरह कोऑर्डिनेट हो जाता है कि वो नेक्स्ट सिग्नल को ऑटोमेटिकली ग्रीन मिलेगा और थर्ड सिग्नल फोर्थ फिफ्थ इसी तरह पूरा कॉरिडोर चल। तो इन चीजों को करके आप अवॉइड कर सकते हैं कि आप जो ह्यूज पैसा जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगा रहे हैं कम से कम करके उसको जो है दूसरे सेक्टर्स में आप वो पैसा यूज कर सकते हैं। पैसा आपके पास लिमिटेड है, आप गरीब मुल्क, ठीक है जी, ये चीज हो गई। इसी तरह गाड़ियों के ट्रैफिक कामिंग के लिए हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है जी स्पीड ब्रेकर बना दिया, आपने देखे ही होंगे कराची में या लाहौर, तो वहां पे हम स्पीड ब्रेकर नहीं बनाते हैं, हम पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग होती है उसको रेस्ट कर देते हैं।
ठीक,
तो यानी वो इतना चौड़ा हो जाता है कि आराम से पेडेस्ट्रियन को साइडवॉक से नीचे ही नहीं आना पड़ता, वो रोड पे उसी लेवल से जो है क्रॉस कर जाते हैं।
बिल्कुल सही,
डिसेबल लोग हो गए जो व्हील चेयर वाले उनके लिए। अच्छा, इसके अलावा कुछ ऑपरेशनल इश्यूज ये हैं कि हम कोई न्यू डेवलपमेंट बना रहे हैं, कराची में भी कहीं है, लाहौर में भी बनती है। अब न्यू डेवलपमेंट में कोई रहना स्टार्ट कर रहा है, ही मस्ट हैव अ कार और अ मोटरसाइकिल। तो जब हम कोई न्यू डेवलपमेंट बना रहे हैं सिटी सेंटर के साथ एक बस रूट उसके साथ कोई नया अटैच कर दें, भले फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हो, एक घंटे में भी एक बस चल रही हो, एटलीस्ट यू विल हैव एन ऑप्शन कि भाई कोई ऑप्शन तो है आपके पास कि आप एक घंटे में भी सुबह आपको 9 बजे दफ्तर है, आप 8 बजे वाली बस में बैठ के 9 बजे चले गए दफ्तर अगर आप दूर कहीं रह रहे हैं। तो ये चीजें हमें सोचनी पड़ेंगी। अच्छा, मैं कुछ और चीजें भी लाता हूँ। हमारी जो एग्जिस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सर्विस है, मेट्रो तो एक कॉरिडोर पे चल रही है ना जी, बाकी पूरा शहर कहाँ जाएगा। तो ये मेरा पॉइंट शुरू से रहा है जब से ये मेट्रो स्टार्ट हुई है कि आप जो अगर लाहौर की आई थिंक 70 बिलियन थी, इस्लामाबाद की 50 बिलियन, कराची 30 बिलियन पे चली गई, इतने पैसों की अगर आप बसेस पूरे शहर में ला के चला दें, एक बस की प्राइस आई थिंक 2010 में 1 करोड़ थी, अब 1.25 करोड़ हो गई होगी या इसी के अराउंड। तो अगर आप स्पीड पे अपनी जो है वो अच्छी कर दें, मतलब ये नहीं कि हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करें, लाइट इन्वेस्ट करें,
यानी कि आप ऊपर इतना 30 फुट पे एक शहर की, हम तो दूसरी मंजिल बना रहे हैं ना, तो शहर की दूसरी मंजिल अगर ना बने, जमीन पे रहने दें, तो वो दूसरी मंजिल का कॉस्ट कम हो जाएगा, ठीक है ना।
एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑप्टिमाइज करें ना।
मैं देखता हूँ जी, मैं कल वॉशिंगटन डीसी में गाड़ी चला रहा था तो मैं देख रहा था कि उन्होंने एक लाल लेन बनाई हुई है, उसके ऊपर लिखा हुआ कोई गाड़ी ना इसके अंदर आए, लाल लेन में बस चलती है, BRT बन गया पूरे लंदन में, यही है लाल लेन है, चला दी बस, वहां कोई बंदा नहीं उसके अंदर लेन के अंदर जा सकता, बस के आगे कोई आएगा टिकट मिल जाएगा, ठीक है ना जी।
मैंने जो आपसे बात की थी ना बिगनिंग में कि हमने मैट्रिक अभी किया नहीं है और हम मास्टर्स पे चले,
बिल्कुल सही कह रहे हैं।
तो हमारी जो है,
बिल्कुल सही,
हमारी जो है अभी फुटपाथ नहीं है। अच्छा, मुझे अगर बस स्टॉप तक आना है, मैं अपने घर से निकलूंगा, मेरे पास कोई साइडवॉक नहीं है चलने के लिए,
गाड़ी पे
मैं उसी रोड पे चलूंगा, कहाँ किस तरह आऊंगा, मुझे चलने के लिए कोई जगह तो चाहिए ना। अब लो स्पीड रोड पे तो ठीक है, हम लेन पे भी चल जाते हैं कहीं भी, थोड़ी सी हाई स्पीड रोड है, मैं कहाँ चलूं, कैसे एक्सेस करूं, रोड कैसे क्रॉस करूं।
बिल्कुल,
तो इवेंचुअली हमने पिछले 15-20 सालों में जो हमारा पुराना सिग्नलाइज सिस्टम था, क्रॉसिंग्स होती थी, ओपनिंग्स हर जगह होती थी, एक्सेसिबिलिटी थी, उसको किल कर दिया गाड़ियों को सपोर्ट करने के लिए। और सडनली हमें 15-20 साल बाद ख्याल आया जी हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो है ही नहीं। हाँ। कराची में इनफैक्ट नॉर्मल बस सिस्टम हुआ करता था, इसीलिए कराची बड़ा गरीबों का शहर कहलाता था कि हर जगह से दूसरी जगह जाने के लिए।
लाहौर में भी था, मैं खुद कॉलेज बस पे जाता होता था, स्कूल बस पे जाता था, मौजूद थी बस।
मतलब मैंने जो अपनी लाइफ में मतलब 15-20 साल में पिछले देखा वो यही हुआ कि सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स बनते गए, एक्सेस ब्लॉक होते गए, बस जो है डिसकंफर्टेबल से डिसकंफर्टेबल यानी मुश्किल से मुश्किल होता गया कि आप किस तरह बस में जाएं। पहले आप घर से चल के जा रहे हैं, फिर रोड क्रॉस आप करते थे दूसरी साइड से बस में बैठने के लिए उतरने के बाद।
रिजवान साहब, मेरा ख्याल मुझे काफी आपकी बात समझ आ गई और काफी मजेदार आपने बातें की हैं। जरा मैं छोटा सा दो तीन अच्छा चले कंप्लीट कर जल्दी से कर ले,
मुझे और बयान करने थे। मैंने एक स्टैट देखे कराची के अंदर जो है पाकिस्तान के अंदर 17 मिलियन व्हीकल रजिस्टर्ड थी 2015 के एंड, उसमें कार जो थी सिर्फ 2.7 मिलियन है और बाइक 12 मिलियन है। अच्छा, जो हम सारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम डिजाइन करते हैं, अच्छा कराची में अगर 3.5 मिलियन व्हीकल है तो थोड़ा बेहतर है, कार 40% है, बाइक 50% है।
अच्छा,
तो हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम या रोड डिजाइन कर रहे हैं, हम तो गाड़ी के लिए डिजाइन कर रहे हैं।
बिल्कुल गाड़ी के लिए कर रहे, बिल्कुल सही, बिल्कुल
बाइक के लिए कुछ भी डिजाइन नहीं कर रहे।
बिल्कुल,
तो ये बाइक इतनी ज्यादा हो गई, यूएई में तो बाइक स्टैंडर्ड ट्रांसपोर्ट मोड है ही नहीं, कोई बाइसाइकिल है, आइदर कार है। लॉन्ग डिस्टेंस के लिए आई डोंट थिंक सो कि 5 किलोमीटर या 3 किलोमीटर के बाद वो अनसेफ है, दैट्स अनसेफ। इसी तरह रिक्शा जो है इतने लो स्पीड है कि वो किसी 60 पोस्टेड स्पीड पे आ जाते हैं, वो रोड की कैपेसिटी किल करते हैं। आपने 2000 गाड़ियों के लिए 10000 के लिए रोड बनाया है तो वो 2000 रिक्शे 10000 वाली कैपेसिटी उसकी ले जाते हैं।
वेरी गुड पॉइंट।
तो ये सारी हाँ ये जो चीजें हैं ना, जैसे इसी तरह फ्रीट है, अगर वो स्लो लेन में सपोज है चलना है उसको, वो फास्ट लेन में आ रहा है तो वो रोड की कैपेसिटी किल कर रहे हैं। इसी तरह कमर्शियल एरियाज में पार्किंग कहीं नहीं है हमारे पास, सिस्टम गाड़ियों पे बेस कर रहा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है नहीं, आना आदमी ने गाड़ी में ही है, तो इवेंचुअली लेन पे आके गाड़ी पार्क कर रहा है, फिर हम फर्दर अपनी कैपेसिटी किल कर रहे हैं। टैक्सी वाला जो है वो लेन पे रुक रहा है, उसके लिए ड्रॉप ऑफ नहीं है। तो और ये सारी कुछ चीजें इस तरह की हैं, लोग फिर ट्रैफिक सिग्नल फॉलो नहीं कर रहे, इन्फोर्समेंट इतनी अच्छी है नहीं हमारे पास, फाइन का कोई सिस्टम नहीं है, तो वो प्रॉब्लम सारा ये है कि एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को फुली ऑप्टिमाइज हमने किया नहीं और हम फर्दर इंफ्रास्ट्रक्चर ऐड कर रहे हैं, कॉस्ट मतलब पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन स्मार्टली इन्वेस्ट नहीं कर रहे।
अच्छा, बड़ी मजेदार आपने बातें की रिजवान साहब, थोड़ा सा इसको जरा एग्जामिन कर लें, बहुत अच्छी आपने बातें की, बड़ी मजेदार, मुझे तो बहुत इसमें मेरी तो लर्निंग बहुत बड़ी है, नॉलेज बहुत बड़ी है। देखिए जो आप बात कर रहे हैं तो इससे तो लगता है, जो आई डोंट थिंक हम अप्रिशिएट करते हैं, कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो प्लानिंग है वो तो बहुत ही एक रिसर्च और बहुत ही सोच विचार का काम है, वो तो बेवकूफ़ों की तरह सड़कें बनाने का काम नहीं है। आपके पास बड़ी ऑप्शन हैं, कोई एक ऑप्शन नहीं है सिर्फ सड़क बनाना, आपके पास बहुत ऑप्शन हैं। आप इंसान की नीड्स का सोचते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आपने बात की कि हम 4-5 मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, पैदल चलना एक सबसे बड़ी चीज, सेहत भी अच्छी होती है, आप चुस्त भी होते हैं वगैरह, हार्ट भी अच्छा चलता है आपका, साइकिल चलाना वो भी माशाल्लाह आपके लिए बहुत सेहत की याफ्ता चीज है, बड़ी अच्छी चीज
हो रहा है। ऑयल
बचेगा, बिल्कुल। मैं ब्रसल्स में था, मैंने देखा कि वो ट्रेन स्टेशन के साथ इतना बड़ा पार्किंग लॉट था जिसके अंदर मेरा ख्याल कोई 10-15 हज़ार बाइसाइकिल खड़ी थी, 5-6 स्टोरी का पार्किंग लॉट था सिर्फ बाइसाइकल्स के लिए, ठीक है जी, अमीर मुल्क है वो लोग, ये काम वो लोग काम, अमीर लोग हैं वो साइकिल चलाते हैं, हम गरीब मुल्क साइकिल नहीं चलाते। अच्छा जी, ठीक है, नंबर 3 हो गया बस हो गई, नंबर 4 हो गया मोटरसाइकिल हो गई, नंबर 5 हो गया रिक्शा हो गया, फिर उसके बाद गाड़ी। तो इतनी सारी चीज़ों को मैनेज करना, हमने तरजीह सिर्फ गाड़ी को दी हुई है। अब लाहौर में जो सिग्नल फ्री कॉरिडोर बना है, आपने गौर किया होगा, उसके अंदर घुमेरियाँ खानी पड़ती हैं, इधर घूमना पड़ता है, वो रिक्शे विक्शे घूमते हैं, मोटरसाइकिल घूमते हैं, तो सबकी स्पीड ऐसे ही स्लो हो जाती है, कोई तेज़ नहीं होती, हम सोचते हैं तेज़ होती पर होती नहीं है, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बात बताइए कि ये सब बातें तो चले हम समझ गए, अब समझे, खैर समझे तो नहीं, कुछ हमें आइडियाज़ आपने दिए, अभी दिमाग में बैठी नहीं है बातें, सोचनी पड़ेंगी बहुत, और मुझे उम्मीद है कि हमारे इकोनॉमिस्ट भाई जोन से और हमारे ट्रांसपोर्ट जो भी लोग हैं हमारे पाकिस्तान में सोचने वाले,
गवर्नमेंट हमारी
वो बाद की बात है, पहले तो हमारे सोचने वाले को इस पर पेपर्स लिखना शुरू करेंगे, अखबारों में लिखना शुरू करें, को बातें करना शुरू करें। मेरी तो सोच यही ना कि अगर हम बातें ही नहीं करते तो गवर्नमेंट क्या सोचेगी, उनको क्या पता चलेगा। अब मैं आपसे 2-3 सवाल पूछूं, एक तो मुझे बताएं कि हमारी ट्रांसपोर्ट प्लानिंग करता कौन है, मतलब कराची जैसा बड़ा शहर, कराची दुनिया का सबसे बड़ा शहर है तकरीबन, ठीक है,
मैं थोड़ा सा आपको मैं बता दूं, देखें प्लानिंग 3 लेवल पे होती है, एक फेडरल लेवल है वो स्टेट हाईवेज, एनएचए, रेलवे, पाकिस्तान रेलवे, प्रोविंशियल लेवल पे जो है वो इंटरसिटी हाईवेज होती है, कुछ हाईवेज एनएचए के अंडर नहीं होती, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ओन कर। अच्छा, कराची की जो भी सड़क है, कराची में 2 इदारे पहले होते थे, केडीए, केएमसी, जो नए इदारे, जो नए रोड्स होती थी, केडीए नई डेवलपमेंट करके रोड बना के पुरानी रोड्स फिर वो केएमसी को हैंड ओवर हो जाती थी, फिर 2001 में हुआ ये सीडीजी के बनी, उन्होंने दोनों को मर्ज कर दिया, और फिर दोबारा ये अभी यानी जिस मैंने कुछ 1.5 साल 2 साल गवर्नमेंट जॉब भी की है CDGK में, और हम फॉरेन फंडेड प्रोजेक्ट कर रहे थे जैक फंडेड, उसमें इतना इन्होंने तमाशा किया है कि एक दिन नोटिस आता जी CDGK तोड़ दिए, दोबारा KDA KMC बन दी, 2 दिन बाद नोटिस आता नहीं फिर मर्ज कर दी, वो भी देख रहे हैं तमाशा की क्या हो रहा है। तो कराची लाहौर में तो फिर भी बहुत बेहतर है मामला, क्योंकि एक LTCA लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी और LDA, तो LDA के पीछे जो है वहाँ की प्रोविंशियल गवर्नमेंट खुद खड़ी है। कराची का सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो यहाँ जो लोकल गवर्नमेंट है प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसके साथ नहीं खड़ी, उससे ऑपोजिट है, वो बहुत कम पैसा रिलीज कर रहे हैं। आई थिंक 2 साल पहले की बात है, कराची के लिए एलोकेट हुआ 50 बिलियन और सखर के लिए 32 बिलियन, तो कहाँ कराची कहाँ सखर और अमाउंट ऑलमोस्ट सेम है उनका, तो एक तो पैसा कम आ रहा है। अच्छा, प्लानिंग का इशू ये है कि जो गवर्नमेंट का स्टाफ है जो कराची में हायर हुआ है KDA ने, मैम उनको जानता हूँ लोगों को, वो हायर हुए हैं 30.5 साल पहले, ऑलमोस्ट सब रिटायर हो गए हैं और 2-4 लोग बाकी हैं, बाकी कोई स्टाफ ही नहीं है वहाँ पे, ठीक है। तो अब हुआ ये है कि गवर्नमेंट को जो एक आध मतलब नीम हकीम जिसे आप कह लें, एक आध जो भी बंदा मिलता है वो उसको कहते हैं बस तुम रोड बनवा लो। कुछ रोड अभी 2-2 बिलियन की रोड बनी है बगैर डिजाइन के बनी है, कराची में यूनिवर्सिटी रोड नाम है, 2 बिलियन की रोड सर बगैर डिजाइन के बनी है, दिस इज क्रिमिनल यानी नेग्लिजेंस, और ये CM साहब खुद करवा रहे काम, ठीक है। कोई लोकल गवर्नमेंट भी है लेकिन उसका लेवल इसलिए नहीं है कि प्रोफेशनल लोग जो पुराने थे, देखे 30 साल पहले जिन्होंने पढ़ा काम किया वो एग्जीक्यूशन समझ रहे, लेकिन डिजाइन एक बड़ा डायनेमिक सब्जेक्ट है, प्लानिंग
बिल्कुल 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 सही, हाँ।
उसको समझने वाले लोग कोई है नहीं। अच्छा, दूसरे नंबर पे आ जाएं, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट काम देती है कंसल्टेंट को, तो एक तो ये कि भाई कराची में इतनी रोड्स हैं, इसमें ये जंक्शंस हैं, जो जंक्शन गवर्नमेंट को पसंद आ जाए या जो भी उनकी प्लानिंग होती है थोड़ी बहुत वो कंसल्टेंट को दे देते हैं, इस जंक्शन पे आप फ्लाईओवर बना दें। अच्छा, अब कंसल्टेंट का इशू क्या है कि उनके भी इश्यूज हैं दूसरे, एक तो ये कि वो बिजनेस ओरिएंटेड होते हैं। अच्छा, UAE में क्या है कि क्लाइंट खुद जो गवर्नमेंट हायर करती है प्रोफेशनल अपने अपना एम्प्लॉय रखती है, उनको कॉन्ट्रैक्ट पे रखती है कि भाई, और जो कंसल्टेंट से ज्यादा काबिल होते हैं एटलीस्ट सेम काबिल होते हैं, तो वो कंसल्टेंट से काम निकलवा सकते हैं, उन्हें पता होता है कि हमने क्या काम लेना है, खुद 10-10, 20-20 साल एज अ कंसल्टेंट काम किया होता है उन्होंने, तो वो एज अ डिजाइनर काम किया होता है। पाकिस्तान में ये कि जो गवर्नमेंट का जो एम्प्लॉय है उसका वो लेवल नहीं है कि वो कंसल्टेंट से काम निकलवा सके, वो उसे एक जंक्शन दे देते कि भाई इस पे आप मुझे फ्लाईओवर बना दे, इतनी कॉस्ट है अप्रोक्सीमेट, उस हिसाब से कंसल्टेंट उसको बना देते हैं, ना उसमें स्टैंडर्ड फॉलो इसलिए नहीं हो रहे कि चेक करने वाला कोई नहीं है, कंसल्टेंट को जितना काम आता है वो उतना करके दे देता है या जितनी उसकी इंटेंशन होती है। तो और दूसरा एक प्रॉब्लम मैंने ये देखा जो डिफरेंस है, हमारे यहाँ इतना ज्यादा कॉम्पिटिशन नहीं है, कॉम्पिटेटिव मार्केट नहीं, UAE में 15 इंटरनेशनल कंसल्टेंट है और 15 लोकल है, हमारे हार्डली 2 से 3 है, तो कॉम्पिटिशन इतना ज्यादा है कि बहुत कम मार्जिन पे काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट को बड़ा सस्ता काम होके मिल रहा है वहाँ पे, कॉन्ट्रैक्टर में भी यही है और डिजाइनर्स में भी यही है, और कंपटीशन की क्वालिटी बहुत अच्छी इंप्रूव दिन ब दिन होती जा रही है। कोई
ये बताइए कि जो हमारे अर्बन प्लानर्स होते हैं, ट्रांसपोर्ट वाले लोग होते हैं, ये किस ग्रेड में होते हैं और किस ग्रेड में रिटायर होते हैं, क्या इनका करियर होराइजन होता है?
बिल्कुल ऐसे ही, अगर कोई गवर्नमेंट में आएगा इंजीनियर, फ्रेश आएगा, फ्रेश इंजीनियर का काम तो सीखना है अभी, तो उसने यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किया है, 17 पे वो हायर हो जाता है, 5 साल 10 साल वो देखता है, मीटिंग्स अटेंड करता है ज्यादातर, अब हाथ से तो वो काम नहीं कर रहा, उसकी उसकी ग्रूमिंग तो होगी नहीं, वो तो मीटिंग्स में बैठ रहा है, चाय पी रहा है और मिनट्स नोट कर रहा है, मीटिंग्स देख रहा है वो मोस्टली, तो वो 10 साल बाद वही 18 पे चला जाता है, वही 19 पे हार्डली। अच्छा,
उनके
19-20 तक भी चले जाते हैं, आई थिंक इससे ऊपर नहीं जाते,
इससे ऊपर नहीं जाते, ठीक है ना।
लेकिन मसला ये है कि
कराची जैसे बड़े शहर में
एक पॉइंट, ये जो आदमी होता है ना जो 19 या मोस्ट सीनियर लेवल पे आगे ये रिपोर्ट करता है या तो सेक्रेटरी प्लानिंग को या सेक्रेटरी वर्क एंड सर्विसेज को, अब वो सेक्रेटरी का विजन आप सोच लें वो आपकी DMG है या वो बिल्कुल ही फारे,
वो खुद जूनियर लेवल का बंदा होता है, कोई सीनियर लेवल का बंदा नहीं होता,
सीनियर भी हो कोई इशू नहीं है, लेकिन वो बिल्कुल नॉन टेक्निकल आदमी होता है, वो पीछे से कहीं पॉलिटिक्स से गाइडलाइन या डायरेक्शन उसको आ रही होती है, तो वो प्रॉब्लम ये कि जो ये टेक्निकल आदमी गवर्नमेंट में जो कि आधा क्वालिफाइड है मेरे हिसाब से, पूरा एलिजिबल भी नहीं है,
तो चले
वो
तो एक चीज समझ आ गई कि हमारा जो ट्रांसपोर्ट प्लानिंग का डिपार्टमेंट, जैसे सिटी प्लानिंग का डिपार्टमेंट बिल्कुल मफलूज है, हमारे शहर दुनिया के सबसे बड़े हो गए और हमारे सिटी मैनेजमेंट और प्लानिंग और ट्रांसपोर्ट प्लानिंग के डिपार्टमेंट बिल्कुल मफलूज हैं, वो सिर्फ DMG रन कर रही। चले आगे चले, मुझे एक बात बताइए कि हमने फॉर एग्जांपल मैं सोचता रहता हूँ कि दुबई जब मैं जाता हूँ मैं पहली चीज़ देखता हूँ कि एक होता है जिसको वो क्या कहते हैं जो कंजेशन चार्ज है, उसको आप क्या दुबई में क्या कहते हैं, उसका एक नाम है खास, क्या नाम?
सालिक
सालिक है, ठीक है। तो जिस
टोल आ, कह
लें, क्या टोल, मतलब टोल है बट वो एक कंजेशन चार्ज है, टोल से, टोल तो एक रोड का होता है ना, ये तो सिटी का पूरा एरिया उन्होंने रोका हुआ है और कहते हैं इसके अंदर जो जाएगा वो जाने में आप पता नहीं कितने धर्म काट लेते हैं, ठीक है।
शेख जायद रोड पे चार जगह लगाया हुआ है, अगर वो पॉइंट आप क्रॉस करते हैं तो आपने चार धर्म चार्ज देना है, और सुबह जा रहे हैं तो चार अलग, शाम में जा रहे हैं चार अलग।
हाँ, तो और रोडों पे भी लगाया उन्होंने, पूरा एरिया कॉर्डन ऑफ किया हुआ है ना पूरे एरिया में।
फिर जो शेख जायद रोड पे अगर आपको ट्रेवल करना है, दैट्स द प्राइम उनकी आर्ट है, जो पाइन है वो,
चले ठीक है,
उस पे अलावा ट्रेवल करना है कोई चार्ज नहीं।
अच्छा, अब लंदन में उन्होंने पूरा सेंट्रल लंदन को कॉर्डन ऑफ किया हुआ, सिंगापुर में उन्होंने ऐसे किया हुआ है और बाकी मुल्कों में कर रहे हैं। अब मुझे बताइए कि क्या हम ये ऐसी चीज पाकिस्तान में नहीं कर सकते? अच्छा, नंबर एक ये, नंबर दो ये है कि हर मुल्क में मैं देखता हूँ पार्किंग मुफ्त नहीं है, पार्किंग चार्जेस हैं और आपको घंटे के हिसाब से, मैं अब लंदन डीसी जहां भी जाऊं मैं देखता हूं कि, बल्कि मैंने देखा है नैरोबी में, नाइजीरिया में मैंने देखा है, वहां भी पार्किंग चार्जेस हैं, ठीक है। और हम लोग यहां पार्किंग या तो है ही नहीं, या 20 रुपए वाला बच्चा खड़ा है वो 20 रुपए लेके गाड़ी आपकी इधर उधर लगवा देता है, पार्किंग स्पेस ही कोई नहीं है, ठीक है। तो हमने कोई पार्किंग पॉलिसी बनाई है? कराची जैसे शहर में कोई पार्किंग पॉलिसी नहीं, मेरा ख्याल
कोई पॉलिसी नहीं है। देखें, इसमें होता ही है कराची में, एक तो मैं कॉन्सेप्ट बता दूं पार्किंग का, विद इन सिटी देयर शुड नॉट बी एनी फ्री पार्किंग। आप सिटी में गाड़ी लेके घूम रहे, कंजेशन क्रिएट कर रहे हैं, तो आप पैसे पे करें, अदरवाइज आप बस पे जाएं, ठीक है। एक तो जो हमने पहले स्ट्रीट की बात की, स्ट्रीट में जो है पार्किंग एक पार्ट ऑफ स्ट्रीट है, हम रोड डिजाइन कर रहे हैं, रोड में पार्किंग नहीं होती, जब आप स्ट्रीट बनाएंगे तो आपकी पार्किंग क्रिएट होंगी ऑटोमेटिक। इसके अलावा डाउनटाउन में या जगह कम है, आप प्लॉट लेके बकायदा अंडरग्राउंड दो दो तीन तीन लेवल उसमें पार्किंग बना देते हैं, तो ये इशू नहीं है। अच्छा, इशू क्या है, जो कराची में काम हो रहा है, गवर्नमेंट जो है लोकल गवर्नमेंट, वो किसी कॉन्ट्रैक्टर को ये एक एरिया दे देती है कि भाई इस सड़क को आप कवर कर ले और कुछ पैसे उससे ले लेती है, ठीक है। उसमें एक तो लीकेजेस बहुत ज्यादा है, कोई रिकॉर्ड नहीं है इतनी गाड़ियां आ रही हैं जा रही हैं। अच्छा, दुबई में जो कमर्शियल एरिया है उसमें एक घंटे की पार्किंग चार दिरहम में, लेकिन अगर आप एक से ज्यादा जाते हैं तो महंगी होती जाती है, क्योंकि उस जगह पर डिमांड ज्यादा है ना। अगर आप एक घंटा पार्क कर रहे हैं गाड़ी तो आपको सर्टेन अमाउंट दे रहे हैं, लेकिन आप 2 या 3 घंटा दे रहे हैं तो वो मल्टीपल नहीं है, वो फर्दर ज्यादा चार्ज हो जाता है, पर आवर से भी ज्यादा।
एक साहब है यहाँ अमेरिका में, उन्होंने किताब भी इस पे लिखी है, उन्होंने कहा है कि सबसे बड़ा कंजेशन सॉल्व करने का प्रॉब्लम जो तरीका है वो पार्किंग चार्ज लगाना, और हम लोग पार्किंग लगाते ही नहीं। जी,
इसमें वे फॉरवर्ड क्या है कि जिस तरह हम पॉलिटिक्स में बात करते हैं कि हमारे स्टेटस को हर जगह बैठा हुआ है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में अनफॉर्चुनेटली हमारे सिविल इंजीनियर हजरात जो है यही स्टेटस को, ठीक है। इसमें सोल्यूशन क्या है कि आप इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स हैं, टेलीकॉम इंजीनियर जो सिग्नलिंग वगैरह ये सारी चीजें समझते हैं, उनको आप इन्वॉल्व करें, बहुत इजी है, सिंपल आप पे करें और सोल्यूशन आपका है। इसी तरह टोल अगर आपने चार्ज करना है तो मोटरवे की तरह ये थोड़ी आप रुकेंगे, 10 रुपए देंगे पर्ची लेंगे, शहर में तो ये हो ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो वो नंबर प्लेट आपकी ट्रैक करेगा और दैट्स इट। मैंने 2008 में NET के फाइनल ईयर के टेलीकॉम के एक ग्रुप था, स्टूडेंट थे अंडर ग्रेजुएट के लास्ट ईयर, तो वो प्रोजेक्ट कर रहे थे, उन्होंने क्या किया, सिग्नल जंक्शन के ऊपर कैमरे लगाए चारों तरफ और इमेज कैमरा इमेज ले रहा है, इमेज को प्रोसेस कर रहे हैं, जितनी क्यू है उतना ग्रीन टाइम वो बढ़ा दें, ठीक है। तो इस तरह हम जब फाइनल ईयर के बच्चे का अगर ये लेवल है, आई थिंक आपको बहुत कोई सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए ट्रांसपोर्ट के लिए, सिंपल टेक्नोलॉजीज है, आप राइट बंदा इन्वॉल्व करें। आप पोजीशन ये बनी होती है जब गवर्नमेंट की आप बात करें कि भाई सिविल इंजीनियर होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट इंजीनियर, नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर या टेलीकॉम या सिग्नलिंग वाला बंदा चाहिए,
बिल्कुल
आप लाएं, सही बंदा लाएं, वो आपको बहुत कम पैसों में बहुत अच्छा काम कर देगा।
रिजवान, अब ये छोटी सी एक और आपसे बात पूछ लूं, एक तो ये पार्किंग और कंजेशन चार्ज, जैसे आपने कहा कि अब मैं देखता हूं कि अमेरिका, बरतानिया, जिधर भी मैं जाता हूं, उन्होंने जो सिग्नल फ्री कॉरिडोर के बजाय उन्होंने लेन्स डेडिकेट कर, जैसे बस की लेन बना दी है, वैसे उन्होंने लेन बना दी है कि भाई अगर तुमने तेज जाना है तो इस लेन में चल जाओ, पर सिर्फ ये है कि यहां तुम $1-2 एक्स्ट्रा दे दो, ठीक है, और मैं अपने आप हिसाब लगा के मुझे जल्दी हो तो मैं वहां चला जाता हूं और पैसे दे देता हूं एक्स्ट्रा, ठीक है, मुझे मेरे पास टाइम है तो मैं दूसरी लेन में चला जाता हूँ, ठीक है ना। तो लोग इस तरह अपनी डिसीजन लेके, तो जिसने तेज जाना है वो पैसे दे के आगे तेज चला जाए, ठीक है, वो नई सड़क बनाने की जरूरत ही नहीं, हम लोग नई सड़कें सोचते हैं बनाना, फ्लाईओवर, अंडरपास, ये वो।
उसमें ये आई थिंक कराची में या लाहौर में जंक्शन टू जंक्शन स्पेसिंग अगर बहुत ज्यादा है तो आप आई थिंक ये चीज कर सकते हैं इम्प्लीमेंट, तो ये चीज थोड़ी सी मुश्किल होगी मेरा ख्याल है टेक्निकली इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ी देर बाद अगर जंक्शन आ रहे हैं तो शायद थोड़ा सा मुश्किल हो, लेकिन हम जो बेसिक चीजें पीछे हमने डिस्कस की है, गवर्नमेंट के इशूज हैं, कंसल्टेंट के अपने इशूज हैं, वो ग्रूम नहीं हो रहे। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि जिन लोगों को काम आता है क्योंकि 15-20 साल से हमारे यहाँ रोड डिजाइन हो रही है, अर्बन स्ट्रीट डिजाइन कर नहीं रहे, तो लोगों का जंग लग गया एक तरह से जो इंजीनियर्स है।
अभी अब आप एक और जो चीज है, एक और चीज जो मैं देखता हूँ जो बाकी दुनिया में है, उन्होंने वन वे सिस्टम्स बनाए हुए हैं, ठीक है ना,
बिल्कुल
बिल्कुल। मैं हर जगह देखता हूँ, न्यूयॉर्क में देखता हूँ, हर मुल्क में वन वे सिस्टम बनाया हुआ है कि भाई उन्होंने ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर एक सिस्टम बनाया कि आपने यहाँ से जाना है तो ऐसे जाना है तो ये वन वे सिस्टम में आप जाएंगे, ठीक है, और आप उधर से आ रहे हैं तो इधर इस वन वे सिस्टम में से जाएंगे, ठीक है ना। तो वो भी एक बड़ा अच्छा तरीका है ट्रांसपोर्ट स्ट्रीमिंग का, जो हम यूज ही नहीं करते बिल्कुल हमारे पास हर सड़क में।
आई थिंक कराची में ये है, काफी जगह पे है वन वे कॉन्सेप्ट यूज किया हुआ है। उसमें सिर्फ एक डिसएडवांटेज हमारे यहाँ ये है कि इन्फोर्समेंट क्योंकि ट्रैफिक की नहीं है, लोग उस पर ही रॉन्ग साइड आना शुरू हो जाते हैं। तो अगर हम इन्फोर्समेंट अपनी इम्प्रूव कर लें और फाइन का सिस्टम भी ये इम्प्रूव कर लें कि बजाय कि भाई पुलिस वाला ही खड़ा हो वो पकड़े, सिग्नल पे इस तरह आप कैमरेज लगा दें, वो डिटेक्ट करें नंबर प्लेट और उसके घर पे फाइन जाए और वो बेच ना सके जब तक वो फाइन पे ना करे उसकी व्हीकल आगे बेच नहीं सके।
मेरे साथ ये हुआ है, मेरे साथ हुआ है अमेरिका में, मेरे घर में आ गया चिट्ठा कि भाई तुम्हें इस इधर ये तुमने गलती की थी।
हम इसी तरह पे करते हैं, अगर कोई फाइन हमने वायलेशन की है, फाइन हमारे मोबाइल पे मैसेज आ जाता है, हम ऑनलाइन पे कर देते हैं फाइन।
बिल्कुल सर।
अच्छा इसमें वे फॉरवर्ड
एक दो चीजें और बड़ी मजेदार बताएं मुझे, फिर खत्म करें देर हो रही है। एक तो ये बताइए कि ये सब कुछ हो सकता है DHA मॉडल में, हम जो फैलाई जा रहे हैं शहर को उसमें क्या ट्रांसपोर्ट हम कभी प्लान कर सकते हैं? इसमें क्या जरूरी नहीं है, जैसे दुबई में तो आप फ्लैट में रहते हैं, लोग अक्सर फ्लैट में रहते हैं, ठीक है, या विलाज हैं थोड़े बाहर, बट ये तो नहीं कि दुबई को फैलाई जा रहे हैं पागलों की तरह, ठीक है, ज्यादातर आबादी डेंसिटी में रह रही है, तो ट्रांसपोर्ट प्लानिंग के लिए क्या डेंसिटी जरूरी नहीं है?
देखें बात यह है कि जो आपने बात की ना, जो आप वर्टिकल ग्रोथ की बात करते हैं, अगर आप अबू धाबी को ले लें, अबू धाबी एक बहुत छोटा सा आइलैंड है, उसके पास लैंड नहीं है ज्यादा, उन्होंने ज्यादातर अर्बन स्ट्रीट बनाई है विदाउट फ्लाईओवर, वो मैनेज कर रहे हैं ग्राउंड प्लस 20 स्टोरी बिल्डिंग्स को, जिसमें अच्छी खासी तादाद कमर्शियल बिल्डिंग की ऑफिस हैं सारे, और वो सिग्नल पे पूरा शहर चल रहा है। उसमें रीजन सिर्फ यही है कि लोग जो है, हमने यहाँ जो पढ़ा है कि मिक्स लैंड यूज अच्छा नहीं होता एज अ प्लानिंग, कि भाई रेजिडेंशियल एरिया अलग होना चाहिए, कमर्शियल अलग, इंडस्ट्रियल, वहां पे ये है कि एक स्ट्रीट जो है वो कमर्शियल स्ट्रीट है, बिल्कुल उसी के पीछे रेजिडेंशियल स्ट्रीट है, लोग वहीं रह रहे हैं, 15-20 मिनट वॉक कर रहे हैं, और बड़ी बड़ी 20 स्टोरीज बिल्डिंग है तो उसके नीचे शेड होता है, हालांकि गर्मी ठीक ठाक है, लेकिन लोग मजे से वॉक करते हैं और चले जाते हैं। तो उन्होंने इस तरह मैनेज किया हुआ है इसको, जो आप बात कर रहे हैं वर्टिकल ग्रोथ।
अच्छा ये बड़ी मजेदार बात है, तो आपने बड़ी मजेदार बातें बताई हैं रिजवान साहब, कि जी एक तो ऑप्टिमाइज करना है हमें सड़क को, हम ये ना सोचें सिर्फ गाड़ी है, वी हैव टू ऑप्टिमाइज द यूज ऑफ द सड़क। इसी तरह बड़ी मजेदार चीज़ है, आपने 5-6-7 हमें ट्रांसपोर्ट की चीज़ें बताई हैं। एक और बंदा है हार्वर्ड का, बड़ा अच्छा माहिर, उसने किताब भी लिखी है ट्रायंफ ऑफ द सिटी, वो पढ़ने वाली किताब है, उसका नाम है ग्लेजर साहब। ये कहते हैं कि हम भूल जाते हैं कि द चीपेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट, नंबर एक तो आपकी टागी है, ठीक है, नंबर दो आपकी बाइसिकल है, पर वो कहता है एक और भी चीप मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, इज द एलिवेटर, ठीक है, कि ऊपर नीचे चल जाए। हम लोग ये सब ट्रांसपोर्ट के मोड्स भूल चुके हैं, हमारे पास सिर्फ एक गाड़ी है। मेरा ख्याल है वो इसलिए क्योंकि हमारे सरकारी अफसरों को मुफ्त गाड़ी मिलती है, तो मुफ्त गाड़ी मिलती है तो चलाते आराम से जो मर्जी, एक गाड़ी नहीं, चार पाँच पाँच छः छः गाड़ियाँ मिलती हैं, ज़्यादातर गाड़ियाँ तो उनके पास हैं, तो वो फिर अपने लिए प्लान करते हैं, क्योंकि उन्होंने बाकी जो ट्रांसपोर्ट के मोड्स देखे ही कभी नहीं।
देखें वही बात है ना, डेवलपमेंट जो आपने सवाल पूछा होती कैसे, गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स को कहती है, ऑफिशियल्स को, कि भाई आप हमें डेवलप करके दें, ऑफिशियल्स कंसल्टेंट या जो डिजाइन ऑफिस है उनके पास जाते हैं, उनका भी विजन लिमिटेड है, वो पाकिस्तान में ही रहे हैं मोस्टली, यही काम किया है, बाहर से कोई आदमी उनके पास आएगा वो ड्यू टू मेनी रीजन, यहाँ पे करप्शन इतनी है कि कंपनीज के पास काम करने के बाद जो वो लीकेजेस होते हैं, इतना प्रॉफिट बचता नहीं है कि वो प्रोफेशनल एम्प्लॉई को, जो बाहर से तगड़ा बंदा जो होता है, जैसे काम की समझ है, जो चीजें समझता है, उसको वो 10-15 लाख रुपए दे सके, अगर वो कंपनी इतने पैसे देगी तो वो प्रॉफिट क्या कमाएगी, लीकेजेस अलग है सिस्टम में, अगर जो कंसल्टेंसी है प्रोजेक्ट की,
अगर सिस्टम सीखने, अगर सिस्टम सीखने के लायक ही नहीं तो वो अच्छा बंदा क्यों लेगा। देखे ना जी, अगर सिस्टम में बंदों को इसको देखे, डिमांड होनी चाहिए पहले अकल की, वरना अकल क्यों कोई खरीदेगा।
देखें एक लिमिट होती है, अब इसके बाद कराची जो प्रोफेशनल लोग कहते हैं ऑन द वर्ज ऑफ डिजास्टर, इतने ज्यादा यहाँ प्रॉब्लम्स हैं एनवायरनमेंट के भी और बीमारियों के भी, कि कभी भी कोई वबा फूट जाए कोई सोल्यूशन SOP कोई नहीं है,
वो हमें क्यों, हो सकता है, वो हमें क्यों फर्क पड़ता है। देखिए हमारे उमरा जौन से हैं, वो तो वहां रहते ही नहीं है, वो आते जाते हैं, हर वीकेंड पे दुबई चल जाते हैं, हर चंद दिन बाद लंदन चल जाते हैं, यहाँ तो पैसे बनाने हमारे जैसे हुक्मरान हैं, वो जैसे उनकी हुक्मरानी खत्म होती है चल जाते हैं।
एक सवाल है कि हम दोस्त आपस में बात करते हैं, जब ये लोग दुबई आते हैं या लंदन वगैरह जाते हैं तो वहां जो चीजें देखते हैं इनके जहन में जरा सा कुछ वो नहीं होता कि यार चलो हम एक जगह तो इम्प्लीमेंट करके देखें, इनकी अपनी जमीनें भी हैं, अगर सड़क अच्छी बनेगी प्रॉपर्टी की वैल्यू इनकी भी ऊपर जाएगी तो इन्हें फायदा तो होगा।
अच्छा रिजवान साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आई थिंक दिस वाज एक्सेलेंट। और ये Thank अभी आपसे मजीद बात करनी है, ये तो पहला है आपसे इंशाल्लाह दुबई की, अब हम पूरी ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छी तरह समझेंगे तो थोड़े दिनों के बाद, थोड़े हफ्तों के बाद इंशाल्लाह फिर करेंगे, ठीक है।
सोच विचार के साथ, मेरा नाम नदीम अल हक है
और मेरा नाम अंजुम अल्ताफ है।